सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
तो आठवां अध्याय हम लोग देख रहे थे। आठवें अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है और इस प्रश्न का बीज कहाँ है तो सातवें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में है। तो अर्जुन के सात प्रश्न हैं और इन सात प्रश्न से में हम लोगों ने 6 प्रश्न का उत्तर पिछले कक्षा में देख लिया था और यह भी कहा था कि आप इन 7 प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो आप लोगों में से केवल एक ने मुझको उसका उत्तर भेजा है और मैंने आशीष जी से कहा भी था कि आप जो है रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। ये इसलिए मैंने कहा था कि आपकी मेमोरी का ये टेस्ट था। हम बहुत सोचते हैं कि हम याद रख सकते हैं मगर होता नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो जब तक आप अपना नोट नहीं लिखोगे ये तो भूल जाएंगे। जितना हम लोग डिटेल पढ़ते हैं आगे आगे पढ़ते जाएंगे पीछे पीछे भूलते रहेंगे, ऐसा ही होता है, यही नियम है। अगर आप अपना नोट बनाओ तो आप क्लास में आने के पहले थोड़ा सा अगर उसको रिवाइज कर लो। हालांकि मैं रिकैप करता हूँ, हर बार करता हूँ कि मुझे मालूम है कि आप किताब भी नहीं खोलते हो, मगर आपको अगर साधना अच्छी करनी है ठीक करनी है तो अच्छी तरह से आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप इसका विज्ञान ही नहीं पता लगेगा तो फिर कैसे चलोगे गीता को, कैसे कैसे समझोगे, कैसे उसके हिसाब से फिर चलोगे। तो 7 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न था किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है। तो भगवान ने उत्तर दिया अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम परम निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही है बस। अब हम उसको और उसका विश्लेषण नहीं करेंगे। आपको अगर और डिटेल जानना है क्यों ओंकार नहीं है क्यों सगुण ब्रह्म नहीं है तो आपको लेक्चर सुनना होगा पीछे का। तो यहाँ पर ये ब्रह्म कौन है, निर्गुण ब्रह्म की बात है। किम अध्यात्मम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म क्या है तो बोलते जो स्वभाव है वही अध्यात्म है। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं उसी पर ब्रह्म का जो प्रत्येक शरीर में अंतर आत्म भाव है उसका नाम स्वभाव है, वह स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। वो अध्यात्म है। कर्म क्या है, किम कर्म विसर्ग कर्म संगीत, विसर्ग विसर्ग मतलब त्याग। देखो जब हम कर्म कांड करते हैं फायर रिचुअल यज्ञ करते हैं तो उसमें हम त्याग करते हैं, कुछ ऑब्लेशन का त्याग करते हैं। तो कर्म क्या है, बोले त्याग रूपी जो आप कर्म करते हो वही कर्म है। त्याग रूपी जो कर्म हम करते हैं वही कर्म है। अभी इस समय हम लोग त्याग रूपी कर्म नहीं करते हैं, त्याग रूपी कर्म नहीं करते हैं। जैसे हम अग्नि के अंदर ऑब्लेशन देते हैं सामग्री देते हैं तो हम कहते हैं ये भगवान आपके लिए है। तो कर्म जो अभी हम कर रहे हैं क्या हम ये कहते हैं भगवान ये आपके लिए है, देखो समझो इसको अच्छी तरह से, क्या ये त्याग कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे हैं। तो कर्म क्या है? जो त्याग रूपी है, जो भगवान के लिए है, भगवान के लिए मतलब भगवान की खुशी के लिए है, ऐसे आपको समझना है। अधिभूतम किम प्रोक्तम, अधिभूतम क्षर भाव है। तो क्षर भाव मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति विनाश वाले सारे पदार्थ अधिभूत हैं, जिनकी भी जिन भी भूतों की उत्पत्ति होती है, जिनका विनाश होता है, वो सारे के सार जो हैं वो अधिभूतम है। तो क्या चीज की विनाश होता है, क्या उत्पत्ति होती है, हमने देखा है, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है हमें वो सब का सब जो है उत्पत्ति और विनाशशील के अंदर आता है, इसके जन्म है और उसका मृत्यु भी है। तो इसमें क्या पड़ेगा? हमारा शरीर आ जाएगा, उत्पत्ति है विनाश है, मन बुद्धि उत्पत्ति विनाश के अंदर आएगा, सारा जगत भी उत्पत्ति विनाश के अंदर आ जाएगा, सब कुछ उत्पत्ति विनाश में है। चार बाबा अधिदैवम किम उच्चते, अधिदेव किसको कहते हैं? पुरुष च अधिदैवतम पुरुष, ये पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन हुआ? ब्रह्मा जी। सबसे पहले व्यक्त कौन हुए? ब्रह्मा जी, प्रथम पुरुष। उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी को सूत्रात्मा कहते हैं, या प्रजापति भी कहते हैं। तो अव्यक्त से जो प्रथम व्यक्ति हुई, जो प्रथम मैनिफेस्टेंट हुआ, उसको अधिदैव कहते हैं। अधियज्ञ कथम कह अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और कैसे है? देखो यहां दो प्रश्न है, अधियज्ञ कौन है और कैसे है? उत्तर भगवान ने दिया, अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देववृतांबर, देववृतांबर मतलब ए अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव के रूप में मैं हूं, अहम मैं हूं यहां पर। अच्छा, तो जो मैं हूं वो कौन है? बोले वही अधियज्ञ है। कैसे हैं आप? बोले अंतरात्मा रूप से हूं। आप देह में कैसे हो? अंतर्यामी के रूप में, अंतरात्मा के रूप में हूं। अच्छा, और कभी कभी हम अंतरात्मा की आवाज सुनते भी हैं, गलत काम करने जाते हैं तो हमारी आत्मा कहती है अरे क्या कर रहे हो, गलत काम करो, मगर हम सुनते नहीं है, ये हमारी मर्जी है, मगर आत्मा हमको कभी कभी बताती है कि ये गलत हो रहा है। अधि यज्ञ में यज्ञ वर्ड आया, और यज्ञ की परिभाषा हमने आगे भी देखी है, यज्ञो वही विष्णु। तो विष्णु हमारे भीतर में हैं, बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं, क्या करते हैं विष्णु बैठ कर? अंतर्यामी, अंतर्यामी रूप से वो हमारे देह के अंदर हैं। तो यज्ञ करना एक दिव्य कर्म है, जो यज्ञ जो करते हैं उसको हम दिव्य कर्म कहते हैं, और जो करवाता है वो अधियज्ञ है। करवाता है मतलब, देखो ये शरीर तो हमारा जड़ है ना, जब वो भगवान परमात्मा विष्णु रूप से हमारे भीतर में रहते हैं तभी सारी इंद्रियां काम करती हैं। तो कौन करवाता है? तो वो परमात्मा हमसे करवाते हैं, इसलिए वो अधियज्ञ हैं। और भगवान हमको बराबर संकेत देते रहते हैं क्या ठीक है और क्या गलत है, इसका संकेत बराबर मिलता रहता है। हमारा सबका अनुभव है, हमारा सबका अनुभव है क्या सही क्या गलत, तो भगवान बताते हैं। अब जो है सातवां प्रश्न आता है, प्रयाण काले च कथम गियोसी नियतात्म भी, जिसका मन भगवान के साथ युक्त है। हम सब व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न ये है अर्जुन का कि जो नियत आत्म भी है, जिसका मन भगवान के साथ युक्त है, उसका कैसे होगा? युक्त चित्त वाले पुरुषों का द्वारा अंत समय किस प्रकार जानने में आते हैं? भगवान ने कहा ना कि अंतकाल में भी हम मरने के एक सेकंड पहले भी आपको ज्ञान देके चले जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो कौन से व्यक्ति को देते हैं? जो नित्य युक्त है, युक्त आत्म भी जो है, ऐसे युक्त चित्त वाले को, चित्त मतलब माइंड, जिसका मन युक्त है भगवान से, उसको आप कैसे दिखाई देते हो अंतकाल में भी? तब ये इसका उत्तर अब यहां से चलेगा, पांच से लेके इस अध्याय के अंत तक, ये सातवें प्रश्न का उत्तर है। छह प्रश्न के उत्तर हो चुके हैं, सातवें प्रश्न का अब उत्तर आ रहा है। तो ये श्लोक नंबर 5, 6 और 7 बहुत विख्यात श्लोक हैं, बहुत विख्यात हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। और उसके बाद में भगवान कुछ साधना बताएंगे, हम देखेंगे आस्ते आस्ते। अब श्लोक नंबर 5।
अंतकाले च मामेव,
अंतकाले च मामेव,
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्,
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्,
यः प्रयाति समद्भावम्,
यः प्रयाति समद्भावम्,
याति नास्त्यत्र संशयः,
याति नास्तत्र संशयः,
अन्तकाले च मामेव, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यः प्रयाति समद्भावम्, याति नास्त्यत्र संशयः।
भगवान उत्तर देते हैं, ये किन लोगों के लिए है? जो नियत आत्म भी हैं, जिनका चित, यहाँ आत्मा का मतलब मन हुआ, जिनका मन भगवान के साथ युक्त है, ऐसे व्यक्ति को अंतकाल में भी भगवान ज्ञान दे सकते हैं। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्ता कलेवरम, और वो व्यक्ति अगर भगवान का नाम लेकर उसका शरीर छूटता है, कलेवर मतलब शरीर, मुक्ता मतलब त्याग कर रहा है, अंतकाल में, अंतकाल क्या हम लोग देखेंगे, और यह प्रयाति जो ऐसे जाता है अंतकाल में, जिसका मरण का समय है, अंतकाल है, और भगवान का नाम स्मरण करते हुए जाता है, मदभावम याति, मेरे स्वरूप में आ जाता है, मदभावम, भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप में आ जाता है, न अस्ति अत्र, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। देखो ये मरण के बाद होने वाली जितनी चीजें हैं ना, ये शास्त्र को छोड़कर और हमारे पास में कोई उसको परीक्षा करने का या इसको एक्सपीरियंस का, अनुभव करने का कोई तरीका नहीं है। मरेंगे उसके बाद में पता लगेगा ना भगवान के पास गए कि नहीं गए, उसके पहले कैसे पता लगेगा हमें? तो पहले पता जो है वो गीता, भगवान खुद बता रहे हैं अपने आप। ये कौन उत्तर दे रहा है? भगवान उत्तर दे रहे हैं कि भाई ये ऐसा होता है, वो मेरे पास आ जाता है। अच्छा, तो भगवान देखो यहाँ सिद्धांत बता रहे हैं, सिद्धांत मतलब ऐसा करोगे अगर आप युक्त चित्त वाले हो, मरण काल में अगर मेरा याद करोगे तो मेरे पास आओगे, ये सिद्धांत है, सिद्धांत बहुत सहज सिद्धांत है, सिद्धांत बहुत सहज है, मगर इसका पालन करना कठिन है। अब इस सिद्धांत को आप अगर नहीं मानना चाहते हो, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं नहीं मानेंगे, अधिकांश लोग बोलते नहीं क्या पता है? तो भगवान इसका उत्तर आगे ही देख चुके हैं। ये तू एतद अभ्युष्यंतो न उनस्तंति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान्तान विद्धि नष्टान अचेतसा। जो मेरे सिद्धांत को, जेरी मेरी बात को नहीं मानता है, उसका क्या होता है? वो मूढ़ है, अचेतसा, नष्ट हो गया जीवन उसका, नष्ट हो गया। भगवान सिद्धांत बता रहे हैं ऐसा करो, ऐसा करने से आपको मेरे पास पहुंच जाओगे, अबल नहीं करेंगे हम, तो भगवान क्या कहेंगे? हम तो मूढ़ हो, मेरी बात नहीं सुनते हो। अंतकाले, अंतकाले मैंने मरण काले, ये तो हमको समझ में आता है, स्थूल शरीर का जब मरण होता है तो एक तो ये अंतकाल हुआ, ये तो ग्रॉस है, एक सटल मरण काल होता है, सूक्ष्म होता है, वो समाधि में होता है। समाधि में क्या होता है? आप शरीर मन बुद्धि से परे चले गए, तब मन शरीर बुद्धि आपके लिए उस समय नहीं है, आप तो वहाँ पहुँच गए, भगवान के पास पहुँच गए, वो भी अंतकाल है। जब आपका शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य गया, जीवन नहीं गया, इसको छोड़ के जब हम उस तरफ पहुंच जाते हैं तो वो भी अंतकाल है। माम एव स्मरण, माम कौन है? परमेश्वरम विष्णु, माम एव जो है शंकराचार्य जी यहां बताते हैं परमेश्वर विष्णु, स्मरण, स्मरण केवल मेरा स्मरण करता है, अन्य वस्तु का, अन्य व्यक्ति का या अन्य जीवों का चिंतन नहीं करता है, मरण काल के समय हम जो है अन्य किसी चीजों का चिंतन नहीं करते। अच्छा, फिर च वर्ड आता है, एक च का मतलब क्या होता है, इतर काले अपि अंत काले अपि, च का मतलब हुआ कि अंत काल में भी करता है, क्या करता है, मेरा स्मरण करता है, इतर काल मतलब मरण के पहले भी करता है, अंत काल के पहले भी करता है। अच्छा, आगे भगवान कहने वाले हैं सातवें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, ए अर्जुन तुम मेरा नाम लेते हुए तुम युद्ध करो, तुम अपने कर्तव्य कर्म करो, मेरा नाम लेते हुए करो, कर्तव्य कर्म मतलब हमारी जो ड्यूटी है वो करो, कैसे, हमारा नाम लेके करो। अभी करते हैं हम क्या, सिर हिलाओ भाई, करते हो कि नहीं करते हो, भगवान बोलते हैं करो ऐसा, हम करते हैं क्या, नहीं नहीं करते, हम नहीं करते हैं ऐसा। स्मरण, स्मरण मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर दो चीजें एक साथ हो रही है, भगवान का स्मरण और शरीर का छूटना, दो चीजें एक साथ हो रही है, शरीर छूट रहा है, अंतकाल, अंतकाल दो बताए हमने, एक ग्रॉस मरण और दूसरा सटल समाधि के समय। तो मरण काल में क्या हो रहा है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं और देह छूट रहा है, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। समाधि में क्या हो रहा है, आप भगवान का चिंतन करते हो, हम ब्रह्मास्मि करते जा रहे हो, और वहां समाधि में निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हो, सब विकल्प से निर्विकल्प में पहुंचते हो, किसका चिंतन करते रहते हो, भगवान का ही चिंतन है ना, सब विकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में जब जाते हैं तब भी भगवान का नाम लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा कब होगा, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर कहते हैं कि भगवान से एक संबंध बनाना पड़ेगा, भगवान से एक संबंध बनाना पड़ेगा कि हमारे भगवान इस रूप में हमारे संबंधी हैं, तो आप जो है अब उससे संबंध बनाने के लिए आपको उनका उपयोगी होना होगा, जैसे भी आप जो है अपने माता पिता बच्चों के लिए उपयोगी हैं कि नहीं है, जो जितना आपके निकट है आप उसके लिए उतने उपयोगी हो, उपयोगी हो मतलब उसके लिए आप कर्म करते हो, जो जितना नज़दीक है उसके लिए आप करते हो। तो हमको क्या करना होगा, भगवान से एक संबंध हमने बनाया कि भगवान हमारे पिता हैं, कि भगवान हमारे माता हैं, कि भगवान हमारे बच्चे हैं, कि भगवान हमारे सखा हैं, जैसे भी आपने एक बनाया, अब आपको उस संबंध के लिए उपयोगी होना पड़ेगा। अच्छा, उसमें भगवान के परेशान करने का कोई कारण न बने आप, ऐसा याद रखना होगा, आप जिससे संबंधित हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसके लिए कोई परेशानी का कारण आप ना बने, और हम बनते भी नहीं हैं, हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनके लिए हम उपयोगी हैं, हमारे बच्चे परेशान हो ऐसा कुछ काम करते हैं हम कभी, नहीं करते हम, बच्चे हमारे लिए कर सकते हैं, हमको परेशान कर सकते हैं, मगर हम नहीं करते। अच्छा अच्छा, आप उपयोगी कब हो सकते हो, देखो जब आपकी युवावस्था होगी, जब आपके शरीर में ताकत होगी तो आप उपयोगी हो सकते हो, अब वृद्धावस्था में क्या होगा, जरावस्था है, अब शरीर में ताकत नहीं है, तो उस समय भी अगर आप उपयोगी नहीं हो सकते हो तो भगवान की परेशानी का कारण मत बनो, उस स्थिति में भी आप किसी भी स्थिति में भगवान की परेशानी का कारण मत बनो, तभी यह स्मरण होगा, नहीं तो स्मरण नहीं बैठेगा ठीक से। कलेवर मुक्ता मतलब शरीर छूटने के समय उसकी मन की स्थिति कहां है, उसकी मन की स्थिति भगवान के पास है, मन कलेवर मुक्ता भगवान के पास है, और स्मरण और शरीर का त्याग एक साथ हो रहा है, भगवान का नाम भी ले रहे हैं और जा भी रहे हैं यहां से, दोनों काम एक साथ हो रहा है। यह प्रयाति, यह मतलब जो कोई व्यक्ति करे, हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। प्रयाति, प्रयाति मतलब गच्छति, जो जाता है। ये जाने के हमारे यहां दो मार्ग हैं, जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग को कहते हैं शुक्ल मार्ग और दूसरे को कहते हैं कृष्ण मार्ग। दो मार्ग हैं जाने के लिए। शुक्ल मार्ग को भी प्रकाश मार्ग भी कहते हैं, उत्तरायण भी कहते हैं, एक ही चीज है शुक्ल मार्ग या प्रकाश मार्ग या उत्तरायण। कृष्ण मार्ग या धूम्र मार्ग, एक प्रकाश हुआ और दूसरा में धुआं है, धुंधलापन है, साफ नजर नहीं आता है, धूम्र मार्ग उसको कहते हैं, या दक्षिणायन, या उसको दक्षिणायन कहते हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद में यहां प्रयाति शुक्ल मार्ग की चर्चा के बारे में बता रहे हैं। तो यहां प्रयाति का मतलब क्या हुआ? यहां प्रयाति का मतलब शुक्ल मार्ग से हो जाता है। कौन? जो भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ रहा है। और वो कैसा व्यक्ति है? युक्त चित्त है। ये प्री क्वालिफिकेशन है उसकी। युक्त चित्त वाला व्यक्ति शरीर छोड़ने के समय भगवान का नाम लेके जाता है, यह प्रयाति। कहाँ जाता है, किस मार्ग से जाता है? शुक्ल मार्ग से जाता है। अच्छा, तो इस मार्ग में क्रम मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति होती है। जो इस प्रकाश मार्ग से या उत्तरायण से जो जाता है, इसके अंदर क्या होती है? क्रम मुक्ति होती है। देखो, भगवान ने यहां पर उसको जीवन मुक्ति श्लोक में नहीं कहा, यह प्रयाति। उसके बाद में भगवान ने यही लिखा कि वो जीवन मुक्त हो गया, ऐसा नहीं कहा। ये जीवन मुक्ति की बात नहीं हो रही है। मगर शुक्ल मार्ग में जाने वालों का भी पुनर्जन्म नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? हम लोग देखेंगे। और तो शुक्ल मार्ग में जो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं उनका पुनर्जन्म होता है। अच्छा, तो पहले क्या होता है? बोले पहले भगवान के लोक में जाता है। भगवान का लोक मतलब क्या हुआ? आप विष्णु भक्त हैं तो आप कहाँ जाओगे? वैकुंठ जाओगे। राम भक्त साकेत में जाएगा। शिव भक्त कहाँ जाएगा? शिवलोक में जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये शिवलोक कहाँ है, ये साकेत कहाँ है, ये वैकुंठ कहाँ है? ये सारे के सारे ब्रह्मलोक में हैं। ब्रह्मलोक कौन सा हुआ? तो आप लोग को मालूम है, सात लोकों का नाम आपको बताया, बहुत बार बताया। भूर, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्यम। सत्यम वाला जो है वो है ब्रह्मलोक। तो उस ब्रह्मलोक में क्या है? तो ब्रह्मलोक में अगर आप बद्री गए ना, बद्री, हम लोग का बद्री आश्रम है, वहां पर हम लोग का हिंदू मंदिर है एक, वहां पर पास में क्या वाही मंदिर है, क्या बुद्ध मंदिर होगा आसपास में, नजदीक नजदीक में एक मुसलमान का भी कुछ होगा वहां पर नजदीक में। तो वैसे ही वहां पर जो है एक डिफरेंट एरिया है, राम भक्तों का, विष्णु भक्तों का, शिव भक्तों का। जैसे कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी, एक एक जगह में कॉलोनी है, डिफरेंट कॉलोनी है। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं ये ब्राह्मण समाज वाले यहाँ रहते हैं, क्षत्रिय इस एरिया में रहते हैं। आगे ये हुआ करता था, ये शूद्र का एरिया बाहर होता था, गांव के बाहर एरिया होता था सबका अलग अलग। तो वहां भी ऐसा ही है। अच्छा, तो अब वो क्या हुआ? भगवान के समीप चले गए। भगवान के लोक में जाना मतलब भगवान के समीप चले गए, नजदीक चले गए। अच्छा, और वहां जाके फिर भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अगर आप ब्रह्मलोक की शोभा में ही लगे रहे, जब कक्षा हुई, ज्ञान की कक्षा हुई, तब आपको जो है बाहर की शोभा नजर आई, वहां चलते हैं, ज्ञान तो हो जाएगा बाद में, तब ज्ञान से वंचित हो गए, तो वहां भी आपका वैराग्य का टेस्ट होता है, वैराग्य है कि नहीं। आप लोग में थोड़ा वैराग्य, तब तो सत्संग में आए हो। वहाँ जिनका वैराग्य नहीं, वो सत्संग नहीं आते हैं, तो वहां भी ऐसा ही है, कच्चा है भाई, सबको आ जाओ ज्ञान ले लो। तो ज्ञान के केवल दो लोक हैं, एक तो ये मनुष्य लोक है, दूसरा वो ब्रह्म लोक है। बीच के किसी लोक में ज्ञान नहीं होता, वहां से जाओ पुण्य करके वहां पहुंच जाओ और पुण्य खत्म हो जाएगा वापस आ जाओ, ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, सम मद्भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है, तो आप ऐसा नहीं सोचना कि वो मेरा स्वरूप हो गया, उसने मेरे जैसे कपड़े पहन लिए बस हो गया, वो चतुर्भुज हो गया। मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है मतलब सायुज्य हो गया, मेरे से एक हो गया। तो भक्ति शास्त्र के अंदर चार स्टेट बताते हैं ना, आप पहले सालोक के जाना चाहते हो, बहुत करते हैं पूजा पाठ करते हैं, भगवान के नज़दीक चले जाएं, उनके लोक में चले जाएं, उसके लोक में पहुंचने के बाद में फिर आप बोलते हैं हम उनके समीप पहुंच जाएं, जहां मंदिर है वहां पहुंच जाएं, फिर जो है आप चाहते हैं कि मैं उनकी तरह दिखने वाला बन जाऊं, चतुर्भुज विष्णु बन जाऊं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सारूप्य, विष्णु लोक में आप जाएंगे तो जितने भी वहाँ विष्णु लोक में रहने वाले हैं सब चतुर्भुज हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन इसमें असली विष्णु है, सब चार भुजा वाले हैं। और फिर सायुज्य का मतलब क्या हुआ, सायुज्य का मतलब एक हो जाना भगवान के साथ, नहीं हो सद सह मदभावम याति, मतलब मेरे मदभाव मेरे साथ एक हो गया, एक हो गया। तो ये क्रम मुक्ति हुई, क्रम मुक्ति मतलब पहला यहां से वो गया जाके ब्रह्मलोक में या साकेत में या विष्णु लोक में गया, वहां रहा, ज्ञान प्राप्त हुआ, मुक्ति। और एक सद्यो मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति हुई, ये सद्यो मुक्ति, यहां ज्ञान ले लिया यहीं मुक्ति हो गई, यहां आप जीवन मुक्त हो सकते हो। अब आपकी मर्जी है, आपको ब्रह्मा जी से ज्ञान लेना तो आपकी मर्जी है, जाओ वहां जाके तत्वमसी सुनना सुन लो, ये आपकी इच्छा है। न अस्ति अत्र संशय, इसमें भगवान कहते हैं यहां पर इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये अतीन्द्र विषय है और अतीन्द्र विषय के में जो है वेद या भगवान की वाणी यही प्रमाण है, भगवान खुद कह रहे हैं हमको, यही प्रमाण है। तो हमको जो है भगवान कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, ये प्रमाण है, इस पर विश्वास करो, तो हम जैसा कहते हैं वैसा करो। अब भगवान कहते हैं एक जनरल रूल बताते हैं, जनरल रूल आठवें छठे श्लोक में बता रहे हैं।
यम यम वापी स्मरण भावम,
यम यम वापी स्मरण भावम,
त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्तन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।
यम यम वा आपि स्मरण भावम् त्यजति अन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कहते हैं ये जनरल रूल है, आपको कहाँ जाना है आपके ऊपर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, बोले आपका जो अंतिम विचार है ना वो गाइड करता है कहाँ जाना है आपको, वो वहाँ ले जाएगा आपको। अंतिम विचार, मरण काल के लास्ट जो विचार आपका है वो निर्धारित करता है कहाँ जाना है आपको। तो हमको बहुत मतलब जो है अलर्ट रहना होगा कि अंत काल में हम किसका नाम लें, भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के पास पहुँच जाएंगे है? और अगर कुछ दूसरा नाम ले लिया, किसी और की चिंता की, अपने पेट कुत्ते का नाम लिया, तो हे कौन्तेय, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उस भाव से भावित रहा है। तद्भाव भावित। देखो हमारे जो है ना, आपका जो यहाँ पर जब सत्संग में आप लोग आते हो यहाँ पर इन पर्सन, उसके बाद में सोच के आते हो कि भाई यहाँ से घर जाएंगे, मैं फिर याद पड़ जाता है कि घर में दूध नहीं है। लास्ट विचार आया हॉल छोड़ने के पहले, अब पहले विचार क्या था, घर जाएंगे, अब लास्ट विचार आया कि अरे दूध नहीं है, तो आप दौड़ते हो दुकान पर जाके दूध खरीदते हो, विचार बदल गया ना पहला वाला, अंतिम विचार से आप जा रहे हो। उसी तरह शरीर छोड़ने के टाइम में जो अंतिम विचार होता है उस हिसाब से आपकी गति होगी। अंते अंतकाल है प्रयाण, प्राण वियोग समय मरण काल, मरण काल। यम यम भाव, जो भी वृत्ति भाव इस मृत्यु के समय में आती है उस वृत्तियों और भाव मनुष्यों को कंट्रोल में नहीं होती है। ये देखो ये वृत्तियां ये भाव जो है जो अंतिम समय में आती है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये जानबूझकर नहीं आती हैं, ये लास्ट की जो वृत्तियां हैं जो भाव है वो जानबूझकर नहीं आती हैं। आप चाहोगे कि भाई मेरे को जनरल रूल पता लग गया, इट्स सो सिंपल, आई हैव टू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, दैट्स ऑल। अभी सब हो गया, समझ गया हमने, गीता समझ गया, इतना ही तो काम है और तो कुछ नहीं है। मगर भगवान बताना चाहते हैं कि यम यम भाव जो है ना, ये जो वृत्तियां जो आती हैं वो आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। ये वृत्तियां कैसे हैं आती हैं, कैसा हमने जीवन व्यतीत किया है उस पर निर्भर करती हैं। सारा जीवन कैसा व्यतीत किया उस पर निर्भर करेंगी। आप सारा जीवन अगर भगवान का नाम लिए बिना व्यतीत किया तो आप सोचो आपके मन में क्या भगवान का नाम आएगा, कभी नहीं आएगा। जिस वृत्तियों का, जिस वस्तुओं का, जिस चीजों का, जिस व्यक्तियों का संस्कार आपके मन में पड़ा हुआ है वही आएगा, वही आएगा, भगवान का नाम नहीं आएगा। तो हमारी जो आसक्तियां हैं, जो वासनाएं हैं, उनके दबाव से वृत्तियां और भाव आता है। देखो हमारे इस टाइम में भी जो वासना होती है ना, वासना के हिसाब से हमारे वृत्तियां आती हैं, वासना के हिसाब से वृत्तियां आती हैं। अब एग्जाम्पल आपको देते, जड़ भरत, जड़ भरत ने बहुत विचार किया था, ज्ञानी थे, हिरण के बच्चे को ले आए, उससे प्रेम हो गया, मरने के समय लास्ट थॉट हिरण का हुआ, नेक्स्ट जन्म हिरण का हो गया। तो अगला जन्म किसके ऊपर निर्भर करता है, यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद कहता है यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे आपने कर्म किए हैं और जितना आपने भगवान के बारे में सुना है, जितना आपका मन शुद्ध हुआ है, उसके ऊपर आपका जो है दूसरा जीवन, अगला जीवन निर्भर करता है। अगर हम सारा जीवन भगवान का चिंतन करें, भक्ति करें, तो अंतकाल में किसका नाम आएगा, भगवान का आएगा, भगवान का आएगा। महात्मा गांधी जी को देखिए, जब उनको गोली लगी तो क्या उनके नाम से निकला, अनायास निकला, प्रयत्न नहीं किया, हे राम, क्यों हुआ, पीछे साधना है, हठात नहीं निकलता, वो पीछे साधना होती है। तो जनरल रूल क्या हुआ, सारे जीवन का विचार उस समय आता है जैसा विचार वैसा जन्म। आप जान लो सारा जीवन आपने जैसा व्यतीत किया है, जैसे संस्कार डाले हैं, जैसी वासनाएं बनाई हैं, अंतकाल में वैसा ही आपके वृत्तियां आएंगी, उस टाइम में उसी हिसाब से आएगा। अच्छे विचार या भाव अंतकाल में आए इसके लिए सारा जीवन अभ्यास करना होगा। भगवान बोलेंगे, अभी बोलेंगे, अभी भगवान बोलेंगे, सारा जीवन का अभ्यास के बाद में तब लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम आएगा। और अगर हमने सारा जीवन विषय का चिंतन किया, अब आप हमको बताओ अंतकाल में आपका क्या वृत्ति आएगी, बोलो, वृत्तियाँ मृत्यु के समय हमारे अधीन नहीं हैं, हमारा मन हमारी इंद्रियाँ हमारे अधीन नहीं होते उस टाइम में, हम चाह के भी हाथ नहीं उठा सकते, हम चाह के बोल नहीं पाते। कई बार ऐसा होता ना, सिनेमा वगैरह में दिखाते हैं, एक बूढ़ा आदमी मर रहा है, उसने कभी किसी को बताया ही नहीं हमारा बैंक अकाउंट कहाँ है, अब वो बोलना चाहता है बोल नहीं सकता है, लो चाह के भी हम नहीं कर पाते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये हमें जानना है। तो महात्मा लोग समझाते हैं कई बार, बोले एक सेठ था, बहुत अमीर था, उसकी एक दुकान थी, पांच बेटे थे, पांचों बेटे बड़े आज्ञाकारी थे, सब दुकान में ही काम करते थे, बड़ी दुकान थी, आज्ञाकारी। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। अब उस सेठ जी का मरण काल आया, सेठ जी का मरण काल आया, पांचों बेटे सब चारों तरफ खड़े हैं। तो सेठ जी ने देखा, अरे गधे तुम लोग यहाँ खड़े हो तो दुकान में कौन है? देखो सेठ जी का सारे जीवन का चिंतन केवल दुकान है, पांचों बेटे दुकान में काम करते हैं, पांचों यहीं खड़े हैं, अब उनका चिंतन किस चीज का आ रहा है? भगवान का नहीं आ रहा है, विशेष चिंतन, दुकान का चिंतन आ रहा है कंटिन्यू। तो ये इतना शुभ कहने का तात्पर्य क्या है? हम लोग सावधान हो जाएं, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं सावधान हो जाओ, क्या करना है हमें अगर भगवान के पास पहुंचना है तो हमें अभी क्या करना है? भगवान अगले श्लोक में बताते हैं आपको क्या करना है।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु
मामनुस्मरयुद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धि मामेवैशस्य संशयः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैशस्य संशयः।
तस्मात्, तस्मात् मतलब देयरफोर, इसलिए, निगमन, कंक्लूजन। भगवान कहते हैं कि अगर तुमको नित्य युक्त भी बनना है, नित्य युक्त भी मतलब मेरे साथ में आपका चित्त को अगर जोड़ना है, ऐसा आपको अगर बनना है, ऐसे बनने से आपके अंतकाल में भी मेरा ही विचार आएगा, ऐसा अगर आपको बनना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु सब समय माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, और युद्ध च, अर्जुन तुम युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो, दो चीजें एक साथ करो। भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि आप जो है छनछनी लेके और ढोलक लेके अपना पीटते रहो, खाली भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम रह रहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य कर्म भी करो और मेरा नाम भी लो, दोनों काम करो। मैं अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐश्यसी असंशयम, जो मेरे को अपनी मन और बुद्धि अर्पित कर देता है, तुम इसको अच्छी तरह से जान लो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि वो मेरे पास पहुंच जाता, बस आगे ही भगवान ने कह दिया था ना, जो युक्त चित्त वाला है उसके अंदर अंतकाल में मेरे में मेरा नाम की ही वृत्ति आएगी, क्योंकि सारा जीवन उसने मेरा नाम लिया है, इसलिए अंतकाल में आएगा। तो ऐसा करने के लिए, ताकि आपके मन के अंदर में मेरा नाम आए, इसलिए क्या करो? तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु, अभी इस समय, सब समय सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, एंड युद्ध च, और युद्ध भी करो, मेरा नाम भी लो, और कर्तव्य कर्म भी करो, दोनों ही करना है। मैं अर्पित मनोबुद्धि मां वे वैशिष्य संशय। अच्छा, यह नियम है कि अंत वासना पूर्व अभ्यास वासना पर आधारित, अभी पीछे हमने देखा अंत काल की जो वृत्ति है पूर्व संस्कार के ऊपर निर्भर करती है। अंतकाल की वृत्ति, हमको भगवान का अगर नाम लेना है अंतकाल में तो हमको ऐसे संस्कार पीछे बनाने पड़ेंगे। ऐसे संस्कार होंगे हमारे सारे जीवन के, तब जो है अंतकाल में भगवान का नाम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु, सब समय मेरा अनुस्मरण करो। अच्छा, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण जो युद्ध चाहे, मेरा स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म करो, अपने कर्तव्य कर्म को मत छोड़ो। तो यहां पर दो चीजें आ रही हैं, एक तो अपना कर्म करो और दूसरा मेरा स्मरण करो। तो कर्म प्लस उपासना करने को भगवान कह रहे हैं। दो चीजें भगवान करने को कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य कर्म करो एंड अनुस्मरण, मेरा नाम भी लो। तो मेरा नाम लेना उपासना हुई और अपने कर्तव्य कर्म करना आपका कर्म हुआ। तो कर्म प्लस उपासना करने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो कर्म और उपासना से आप कहां पहुंचते हो, ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्मलोक में पहुंचने के लिए आपको आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी योग्यता ये होनी चाहिए कि आपका अंतकाल में मरण काल में आपके मन के अंदर भगवान का नाम आना चाहिए। उस भगवान को के नाम के आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके उसके पहले के जीवन में उसका ही वासना फॉर्म करनी होगी, वासना बनानी होगी। वासना कैसे होगी, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, सब समय तुम मेरा नाम लो, सर्वेषु कालेषु। आप जप करते हो वो क्या सर्वेषु कालेषु होता है क्या, माला लेके बैठते हो कितनी देर, उस टाइम में तो इतनी हड़बड़ी लगी रहती है कि जितना लेट हम होते हैं सारा मेकअप माला पर जाता है, माला की स्पीड बढ़ जाती है। मेरे को अभी ऑफिस जाना 8 बजे, आज लेट उठे हैं, कुछ हो गया, ये हो गया, 3 बार 5 बार 10 बार सारी रिकवरी सारी स्पीड उस टाइम जो है भगवान के ऊपर। वो केवल इतने समय के अनुस्मरण से नहीं हो रहा है, भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु आपको स्मरण करना है और युद्ध भी करना है। युद्ध अर्जुन के लिए है, आप घर में झगड़ा नहीं शुरू कर लेना। अर्जुन का कर्तव्य कर्म उस रणभूमि के अंदर युद्ध करना है, इसलिए भगवान उसको युद्ध करने को कहते हैं। तो आप इसका लिटरल मीनिंग नहीं ले लेना, अर्जुन का कर्तव्य कर्म है युद्ध करना रणभूमि में, हमारा क्या है कर्तव्य कर्म, आपके पोजीशन के हिसाब से, आपकी योग्यता के हिसाब से, आपके वर्ण के अनुसार, आपके आश्रम के अनुसार आपके कर्तव्य कर्म बनते हैं, कर्तव्य कर्म करो अपने। अच्छा, तो यहां युद्ध का माने क्या हुआ, अपना स्वधर्म करो। तो अपना स्वधर्म भी करो, कैसे करना है वो तो भगवान तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में बता चुके हैं। अब 8वें अध्याय में आपको हम ये नहीं बताएंगे कैसे कर्मयोग करना है। भगवान कहते हैं अपना कर्तव्य कर्म करो प्लस उपासना भी करो। तो भगवान को सदा कैसे याद रखें और कर्म करते समय कैसे करें, तो मैं अर्पित मनोबुद्धि, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करें और भगवान की खुशी के लिए कर्म, कर्मयोग। आगे देखो, घूम फिरा के भगवान जो है बोलते हैं बस, मैं अर्पित, तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे को दे दो। तो मैं अर्पित मन का मतलब क्या हुआ, मत चित्त, मन में मेरा केवल ध्यान रहना चाहिए, मत चित्त, हृदय में भगवत प्रेम पूर्ण हो, सारे कर्म भगवान की खुशी के लिए हो। मैं अर्पित बुद्धि मत पर है, आपने ये दो वर्ड आगे भी सुने हैं, मत चित्त मत पर है। तो मैं अर्पित बुद्धि संकेत करता है मत परह को। मत परह का मतलब क्या है, हमने निश्चित कर लिया है कि भगवान ही हमारे लक्ष्य हैं, इस पर हमने डिसाइड कर लिया। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, आप लोगों ने किसी ने विश्वास मतलब डिसाइड कर लिया क्या, निर्णय ले लिया है कि भगवान ही हमारे लक्ष्य है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी तक हमारा लक्ष्य क्या है, अभी रिटायरमेंट हो जाएगा, थोड़ी और हो जाएगी, बच्चे अभी बड़े हो जाएंगे, सेटल कर जाएंगे, फिर सोचेंगे शादी। अरे ये तो यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे शादी नहीं करते यहाँ। इंडिया में तो फिर भी पढ़ा लिखा के बोलते शादी कर लो, यहाँ तो बोलते हैं माँ बाप तुम दूर रहो, डोंट इंटरफियर, डोंट सजेस्ट एनीथिंग, हम अपने आप करेंगे। और हम भारतीय माँ बाप जो है बुढ़े होते थे चिंता ही करते रह जाते हैं कि बच्चे कब सेटल होंगे, कब सेटल होंगे। हम सोचते हैं हमारा दायित्व खत्म हो, दायित्व खत्म, दायित्व खत्म हो तब तो सत्संग में जाएं, हमारा तो दायित्व ही नहीं खत्म हो रहा है। देखो कितनी विडंबना है। अच्छा, इसके बाद में तो ये मोर और लेस जो आपको बता रहे हैं, मई अर्पित मनोबुद्धि, ये कर्मयोग हुआ यहां पर। माम एव इच्छसि असंशयम्, भगवान कहते हैं ऐसा करोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे, बिना संशय के इस सुझाव का पालन करो, इसमें डाउट नहीं करो, इसमें कोई संशय नहीं रखो। भगवान अगर कह रहे हैं कि ऐसा करोगे तो मुझको प्राप्त हो जाओगे, इसको विश्वास करो। विश्वास कर लेने से कहीं नहीं होगा, उसके ऊपर फिर काम करो, उसके हिसाब से चलो। क्या काम करना होगा बता दिया भगवान ने, तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर, मेरा याद करो और युद्ध करो, अपने कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो। अच्छा, अब हमको पहुंचना कहाँ है, ये भगवान का नाम लेके हमको पहुंचना है ब्रह्मलोक। देखो ब्रह्मलोक में जाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा नाम स्मरण करो, नंबर वन, नंबर टू कर्तव्य कर्म करो, जैसा हमने आपको सिखाया है तीसरे अध्याय में वैसे आप कर्म करो तो आप पहुंच जाओगे। अब भगवान तीन उपासना बताने वाले हैं जैसे हम, जिससे हम ब्रह्मलोक पहुंच सकते हैं। तो उपासना नंबर एक है आठवां श्लोक, नौवां श्लोक, दसवां श्लोक। उपासना नंबर दो है ग्यारहवां श्लोक, बारहवां श्लोक, तेरहवां श्लोक। उपासना नंबर तीन है चौदहवां श्लोक, फोर्टीन। उसके बाद में उस उपासना करने से क्या फल मिलेगा वो पंद्रहवें श्लोक में है। ठीक है, तब पहली उपासना देखें, क्या ध्येय है हमारा? हमारा ध्येय है कि ब्रह्मलोक जाना है। किस लिए जाना है? क्रम मुक्ति के लिए जाना है। क्रम मुक्ति होगी कहाँ, कैसे? ब्रह्मलोक में, वहां जाके हमको ज्ञान लेना है। तो ब्रह्मलोक में भी ऐसे ही खाली जो है पैसे दे के टिकट काट के नहीं ब्रह्मलोक पहुंच सकते आप। ब्रह्मलोक में पहुंचने के लिए आपको पुण्य चाहिए। कौन सा पुण्य चाहिए? एक तो भगवान का जो स्मरण करेंगे ये पुण्य चाहिए, और दूसरे जो कर्म करेंगे वो भी भगवान के लिए हों। ये दोनों पुण्य मिला के तब आप ब्रह्मलोक के अधिकारी होगे। क्या समझे? ब्रह्मलोक जाना है। भगवान तीन उपासना बताएंगे कैसे जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लो, जो उपासना करनी कर लो। तीन किस्म की चॉइस आपको देंगे भगवान, जो आपको पसंद हो ले लेना। मगर ये तीन उपासना से कहां पहुंचोगे? ब्रह्मलोक। वहां जाके भी अभी जीवन मुक्त नहीं हुए आप। अगर वहां से स्लिप कर गए, अपने कक्षा नहीं पहुंचे टाइम पर, फिर वापस। और अगर आपने कक्षा अटेंड कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मुक्त हो जाओगे। अच्छा, तो शुरू करें, पहला श्लोक देखते हैं।
अभ्यास योग युक्तेन
अभ्यास योग युक्तेन
चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं
परमं पुरुषं दिव्यं
याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्।
भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्ते न, देखो एक नया योग भगवान ने बता दिया, अभ्यास योग है, अभ्यास योग युक्ते न चेतसा न अन्यगामिना, चेतसा मीन्स माइंड, आपका मन न अन्यगामिना और कहीं नहीं जा रहा है, और कहीं नहीं जा रहा है कि अभ्यास योग आप कर रहे हैं, अभ्यास योग से आप मन जो है भगवान की तरफ ले जाए। परम पुरुषम दिव्यम याति, अगर आप ऐसा करते हो तो कहाँ पहुँचोगे, परम पुरुष के पास पहुँचोगे। कौन है वो परम? दिव्य है, डिवाइन है। याति पार्थ अनुचिंतन, अनुचिंतन मतलब कंटिन्यूअसली आप भगवान का नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो। आप कभी भारत की मंडियों में जाएंगे ना, मंडी मतलब मार्केट, तो वहाँ पर वजन करते हैं, तो अब वजन तो अब है एक साथ, तो अनाज जो है एक साथ तो नहीं वजन हो सकता है, तो पलड़े में डालते हैं, फिर उसको गिराते रहते हैं, इधर से उठाया इधर डाला इधर, तो अब जैसे मन एक मन रखा है और 100 kg रखा और 40 kg 50 kg जो भी है रखा, अब उसको एक हिप को जो है एक वजन करना है, तो कैसे वजन करते हैं? राम एक, राम दो, राम तीन, राम चार, राम पांच, राम छः, ऐसे करते हैं। अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, कर्म कर रहे हैं, उनको वही कर्तव्य कर्म है उनका वजन करना, मगर भगवान का नाम साथ लेते जा रहे हैं, राम एक, राम दो, राम। हम कैसे करेंगे? एक दो तीन चार ऐसे गिनते हैं ना, मां मनुस्मरण। अच्छा, अभ्यास योग युक्ते न, इसको अभ्यास योग कहा भगवान ने। इस अभ्यास योग से क्या होता है? दिव्य पुरुष को प्राप्ति होती है, दिव्य पुरुष की प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्न अभ्यास है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितो वहां पर स्थित होना है, स्थित होने क्या कहा, यत्न करना होगा, एफर्ट करना होगा ना स्थित करने के लिए, उसको अभ्यास कहते हैं। और उस अभ्यास को दृढ़ करने के लिए क्या करना होता है? सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि, उसको क्या क्या करना होगा? दीर्घ काल तक, दीर्घ काल तक करना होगा। कई बार हमने आपको बताया कि देखो हम सवेरे जो माला फेरते हैं ना 10 मिनट 5 मिनट, थोड़ा बहुत जरूर काम करता है वो, ऐसा नहीं काम नहीं करता है, काम करता है। अब आप ही बताओ अगर हम सारा दिन अगर नाम लेते रहें तो वो ज़्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा? कोई संदेह है उसमें आपको कि ज़्यादा फायदा नहीं होगा उसमें? तो जो होगा, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लो, अभ्यास करो। कितने दिन करना होगा? दीर्घ काल। कैसे करें? निरंतर आसेवित, आसेवित मतलब श्रद्धा से भक्ति से करो, ये नहीं कि शरीर पर जोर डाल दो मन पर जोर डाल दो, ये भी करना है ये भी करना है, ये हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है, भक्ति पूर्वक होना चाहिए, तब जो है दृढ़ भूमि होगी, तब आपको हाँ भाई ये हो गया। वेदांत की भाषा में अगर कहें तो इसको कहते हैं सजातीय वृत्ति प्रवाह, सजातीय वृत्ति, एक किस्म की वृत्ति, भगवान की वृत्ति चलती जा रही है। अगर आप सारा दिन नाम नहीं ले सकते हो, आपका मन नहीं बैठता एक जगह, तो भगवान की लीला का चिंतन करो, थोड़ा मन को जो है और थोड़ा ज़्यादा फील्ड दे दिया उसको, भगवान की लीला चिंता करते रहो, मगर भगवान में रहो, किसी तरह से भगवान में रहना। चेतसा न अन्य गामिना, मन विषयों में न जाए, भगवान को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहिए, मन कहीं नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन, परमम पुरुष के पास पहुंच जाएंगे। कंटिन्यूसली अगर आप चिंतन करते रहोगे तो वहीं पहुंचोगे। अगर एक बार क्लास में चिंतन करने से दूध लेने जाना है तो हम दूध की दुकान में पहुंच सकते हैं, तो अनुचिंतन अगर बार बार हम भगवान का ही नाम लेते रहे तो कहाँ जाएंगे, संसार में आएंगे क्या? कभी नहीं होगा ऐसा। अच्छा, तो वो पुरुष कैसा है, अनुचिंतन जिस पुरुष का करना है वो कैसा है, तो इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे हम। वो परमेश्वर कैसा है जिसका हमको अनुचिंतन करना है। देखो, उपासना का पूरा पूरा आपको हिसाब किताब बता रहे हैं कि हमको क्या उपासना करनी है, किसकी करनी है, वो कैसा है, सब भगवान बताने बताएंगे। और उसके बाद में फिर कहेंगे कि भाई ऐसे करो, ये उपासना बने। अच्छा, ये आपको पसंद नहीं है, कठिन लगता है, चलो उपासना नंबर टू आपको बताएंगे। फिर भी आप बोलोगे नहीं होता, ये भी नहीं होगा, फिर बोलेंगे अच्छा चलो हम बताते हैं और एक सहज उपाय बता देते हैं। तो अगर आपकी जानने की जिज्ञासा हो तो फिर अगली बार फिर आ जाइएगा सत्संग में। ओ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम।